तो कल हम ईशोपनिषद का भूमिका प्रदान भूमिका पाठ किया था, याद है सबको भूमिका का बारे में। वेद शब्द का अर्थ क्या है, कौन से ज्ञान, सभी ज्ञान ही वेद है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। बल्कि जब हम वेद की चर्चा करते हैं तो उसका मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान का, ज्ञान का चर्चा। तो ये जो वेद का जो ज्ञान है, ये कोई हिंदू का ज्ञान है, ये यूनिवर्सल है, सारे जगत के है, ये केवल इस जगत के ही नहीं, ये वेद का ज्ञान उस जगत का भी है। उस जगत का मतलब क्या है, इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है, आप देखे हैं नहीं देखे हैं, कौन देखे हैं वो जगत? अच्छा, बल्कि तो जानते कैसे उस जगत के बारे में, हाँ, श्रवण करने की माध्यम, वेद की माध्यम, और वेद को वाणी को जो प्रचार कर रहे हैं उन लोगों की माध्यम, वेद। और भारत में भारत में लोग वेद को कैसे मानते हैं, इसका एक दृष्टांत प्रभुपाद कैसे दिया है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये कोई वैदिक आदेश है, ये क्या वेद की आदेश है? इसका मतलब क्या है, भारत में सब वेद को आदेश को एकदम विद अभ्रांत रूप में ग्रहण करते हैं, वेद को एकदम बिना पूछे, बिना प्रश्न, अनक्वेश्चनेबल फैक्ट, इरेवोकेबल फैक्ट। और इसके पश्चात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वेद मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है, वेद वेद कोई मनुष्य के द्वारा किया नहीं गया है, वेद का, इसलिए वेद को अपौरुषीय कहा जाता है, अपौरुषीय, इस भौतिक जगत के किसी के द्वारा वेद का रचना नहीं हुआ। तो वेद कहां से मिला है, वेद कहां से आया है, वेद आध्यात्मिक जगत से आया है, भगवान खुद ब्रह्मा जी को इस वैदिक ज्ञान प्रदान किए थे। और ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति का उपाय है, वेद है माता और सद्गुरु है पिता, ये माता और इस माता और पिता के माध्यम आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे जो वेद के ज्ञान प्राप्त सही रूप से होते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म। और प्रमाण कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और वेरी गुड। तो वेद कौन से प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, वेद को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसलिए वेद का और एक नाम क्या है, श्रुति। शब्द कैसे ग्रहण किया जाता है, शब्द को श्रवण के द्वारा, इसलिए वेद का नाम है श्रुति। थोड़ा सा जगह बना लो और थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे ठंडी है काफी, जितना नजदीक बैठेंगे उतना ही ऊष्मा मिलेगा। और आप लोग भी क्लास में समय पर आ जाइएगा, लेट आना ठीक नहीं है। आध्यात्मिकवादी कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, तो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? निर्विशेषवादी और या मायावादी और साकारवादी। तो वेद का विभाग कैसे हुआ है? एक वेद का चार, एक वेद था पहले, वो चार बना, चार क्योंकि सरल करने के लिए एक रूप में एक अगर रहेगा तो समझना कठिन होता है, तो उसको अगर भाग किया जाता है तो भिन्न भिन्न डिवीजन रहता है तो समझने में आसान होता है। और उसके पश्चात जो उतने बुद्धिमान नहीं है उन लोगों के लिए सरल रूप से महाभारत दिया गया है, जो वेद की भारत की इतिहास है, बल्कि असल में वो वेद वैदिक ज्ञान का सरल प्रकाश है। और वेद का चरम सिद्धांत क्या है, चरम स्तर क्या है? वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र का जो भाष्य है जो व्यासदेव दिया था वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। ये सारा परम सत्व वो है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत हुए है, उद्भूत है। ये सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसका विशेष व्याख्या है। जो ब्रह्म सूत्र जो है, वेदांत सूत्र, वो सूत्र के रूप में दिया गया। सूत्र का मतलब क्या है? एफोरिज्म, बहुत संक्षेप रूप में दिया गया, बल्कि उसका संक्षेप को विश्लेषण करके समझाने के लिए व्यासदेव स्वयं श्रीमद् भागवतम प्रदान किए। तो अब इसके पश्चात शुरुआत कैसे होता है? अच्छा, ईशो उपनिषद, उपनिषद बहुत सारे हैं, 108 उपनिषद हैं, उसमें से प्रसिद्ध हैं ईशा, केना, काठ, बृहदारण्यक इत्यादि। ईशो उपनिषद, कठो उपनिषद, केनो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, आरण्यक, बृहदारण्यक, ऐसे। और ईशा इसमें से श्रेष्ठ है ईशा, क्योंकि जिस उपनिषद में ईशा, ईश्वर का मतलब है परमेश्वर भगवान, जिस उपनिषद में परमेश्वर भगवान का वर्णन हुआ है, भगवान के साथ हमारा संपर्क का वर्णन हुआ है, वो है ईशो उपनिषद। बल्कि इससे भी बढ़कर और एक उपनिषद है, वो कौन सी उपनिषद है? गीतो उपनिषद। वेरी गुड। सर्वो उपनिषदो गाबो, सारे उपनिषद है एक गाय जैसे। सर्वो उपनिषदो गाबो दुग्धा गोपाल नंदन, उस गाय के दोहन कौन कर रहे हैं? गोपाल, गाय के रखवाला श्री कृष्ण, गोपाल नंदन। गोपालक को जो लड़का वो कौन है? नंद महाराज का लड़का नंदन, श्री गोपाल नंदन। और वो गाय का बछड़ा कौन है? और वो उस गाय का दूध क्या है? भगवत गीता। उस गाय का दूध है भगवत गीता। तो गाय का दूध कौन पीते हैं? बुद्धिमान मनुष्य लोग पीते हैं। जिसका सुमेध सह, जिसका बुद्धि बहुत सुंदर है, बहुत उत्कृष्ट है, वो लोग इस गीता रूप अमृत को पान करते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद से निकली हुई है। तो ईशो उपनिषद का शुरू में भगवान का स्तुति हो रहा है। ईशो स्तुति, ईशो मतलब ईश्वर का स्तुति, स्तुति का मतलब वंदना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा, आप सब बहुत बहुत पंडित व्यक्ति है सब। आप सबको कौन किसको ये श्लोक कंठस्थ हो गया है? कौन? वेरी गुड। किसको नहीं है? कंठस्थ करना चाहिए। कंठस्थ करने का तरीका क्या है? मैं बताया था, कर रहे हैं वैसे, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? उसका प्रयोग एक तो है पुनरावृत्ति, बार बार बोलना, रिपीटेशन। ओम कितने बार बोलेंगे? तीन बार। ओके, ओम पूर्णम आदहा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम इदम् उच्यते। ओके, नाउ एक साथ हम पूरा लाइन बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। बस ठीक है, कंठस्थ हो गए हैं? किसको हुआ है हाथ उठाओ, जिसको हुआ है हाथ उठाओ, बताओ।
ओम पूर्णमिदा
पूर्णमादा
ओम पूर्णमादा पूर्णमिदम
पूर्णात्
पूर्णात् मदच्छते।
ओके, ऐसे बार बार बोलने से ओम पूर्णमादा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। एवा नहीं, अवशिष्यते। तो मतलब पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णम एव अवशिष्यते। अच्छा, तो इसका ओम का मतलब है, ओम है वैदिक मंत्र, इसका अर्थ होता है पूर्ण। ओम का मतलब है पूर्ण, पूर्णम, पूर्णम का मतलब सभी तरह से पूर्ण। आप भी बोलिए, सभी तरह से पूर्ण। अदः ओ वह पूर्णम, पूर्ण इदम, ये व्यवहार दृश्य जगत, पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण संतुलन एव ही अवशिष्यते, बचा रहता है। अवशिष्ट, तो इसका अनुवाद है भगवान पूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतएव उनके सारे उद्भव तथा ये व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने में पूर्ण होता है, चूंकि ये संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है, और पूर्णमिदम चूंकि इस भौतिक जगत उनसे उद्भूत हुआ है, इसलिए भौतिक जगत भी पूर्ण है। उनसे जो कुछ उत्पन्न होता है सब पूर्ण है। पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने में पूर्ण होता है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण होता है, और पूर्ण से अगर बहुत कुछ निकाला गया भी, कितने पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, यद्यपि भगवान से इतने पूर्ण का उत्पत्ति हो रहा है, फिर भी भगवान पूर्णमेव अवशिष्यते, भगवान पूर्ण ही रह जाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत हम मैथमेटिक्स में पाते हैं। कौन कौन मैथमेटिक्स किया है? हाँ, अच्छा, डू यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी? व्हाट इज इन्फिनिटी? अनंत, वेरी गुड। अनंत कौन है? और अनंत का संज्ञा क्या है? इन्फिनिटी प्लस 25, इन्फिनिटी माइनस 2500, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 2,005,000, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, पूर्णम एवावशिष्यते। तो ये इन्फिनिटी कौन है? असल में ये थ्रू मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कैन सी दैट द इन्फिनिटी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का दिया हुआ, पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। ब्रह्म में सत है, ब्रह्म अनुभूति सत या अस्तित्व का अनुभूति है। परमात्मा अनुभूति में सत चित अस्तित्व और चेतना का अनुभूति है और भगवान में सारे सत चित आनंद का अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वो परम सत्य से उन स्वरूपों का पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य पूर्ण रूप भी निराकार नहीं है। देखिए कितना सरल भाव से निराकार बात का निरर्शन किया गया है। भगवान अगर पूर्ण है तो भगवान में आकार जरूर होगा। हम अगर बोलते हैं भगवान पूर्ण है बल्कि भगवान का रूप नहीं है तो मतलब भगवान का कुछ नहीं है, है ना? तो भगवान पूर्ण कैसे हो सकते हैं? आपका रूप है, भगवान का रूप नहीं है तो आप भगवान से बढ़कर हैं। आपके पास कुछ है जो भगवान के पास नहीं है। यदि वो रूप विहीन होता या वो अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो वो पूर्ण नहीं हो सकता था। परम पूर्णों में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। भगवान का अनंत शक्ति जो है वो भी पूर्ण है। ये 24 तत्व जितना ये भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है जो पूर्ण की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है और जब वो काला विधि पूरी हो जाती है तो ये अस्थिर अभिव्यक्ति पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयां जीवों को छोटी पूर्ण इकाइयां, ये हिंदी ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई असुविधा नहीं हो रहा है? कभी कभी अंग्रेजी प्रभुपद तो अंग्रेजी में लिखा और उसका हिंदी अनुवाद कभी को उतना सरल नहीं होता है, उतना स्पष्ट नहीं होता है। प्रभुपद हमको बताए थे ट्रांसलेशन के बारे में, पहले तुम समझो उसके बाद तुम जो समझा है वो लिखो, ना समझ कर मत लिखना। शब्द का केवल अनुवाद ही अनुवाद नहीं है, भाव का अनुवाद होना चाहिए। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। हाँ, जब हम भगवान को सही रूप से समझ नहीं सकते हैं तभी केवल अपूर्णता का रूप का प्रकार ये होता है। हमारे ज्ञान कार्य में अपूर्णता या दर्शन में अपूर्णता होता है। ये अपूर्णता हमारे दर्शन का ये अपूर्णता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और ये चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख जोनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वो पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है। ये भौतिक मनुष्य जीवन प्राप्त होकर अगर हम भगवान को समझने का, भगवान को जानने का, भगवान के साथ संपर्क स्थापन करने का सुजोग सदुपयोग नहीं लेते हैं तो हमारा ये जीवन विफल हो जाता है। भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। अगर हम मनुष्य जन्म पाकर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर पशु जोनी में, निम्नतर जोनी में जाना पड़ेगा। वो अच्छा होगा, एक कीड़े की जन्म या एक कुत्ता का जन्म हुआ। आजकल तो कुत्ता का भी बहुत ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं कुत्ता का जन्म मनुष्य से भी बढ़कर है क्योंकि कुत्ता का कितना अच्छा से देखभाल करते हैं लोग, घर वाले को देखभाल नहीं करते बल्कि अपने कुत्ते को बहुत सुंदर रूप से संभालते हैं। ठीक है, अगर कुत्ता का जन्म नहीं मिला, एक जानवर का जन्म जंगल में कैसा लगेगा, रहने का खाने का कोई बंदोबस्त नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव संपूर्ण में संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। मोह क्या है, इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई हो है जब तक वो संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वो हाथ की तरह प्रतीत हो जा तो होता है, लेकिन वस्तु तो उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। तो वैसे ही हम जब भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व का और कोई मूल्य नहीं रहता है। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वो इस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार को सारे सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय हो तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबद्ध न किया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। तो मतलब हम पूर्ण हैं कब, कैसे, क्यों? जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं तभी हम पूर्ण होते हैं। अब हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, यद्यपि पूर्ण होने का संभावना है। तो हमारा जीवन तभी पूर्ण होगा, हमारा जीवन तभी आनंद से भर जाएंगे जब हम परमेश्वर भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ेंगे। तो ये श्लोक फिर से एक बार और हम गाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णदुच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी को?
मायावादी लोग ये बोलते हैं कि किस प्रकार से भगवान का तो कोई रूप नहीं, आकार नहीं है और भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण है तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि आकार भी है और निराकार भी है, लेकिन निराकार जो है वो ऊपर है, तो इसको कैसे खारिज करें, इसको कैसे काटें?
आकार है, कौन सी आकार है? आप तो आकार नहीं मानते, आप तो कह रहे हैं आकार नहीं है, अंत में सब अगर बोलते हैं निराकार ही सबसे ऊपर है, मतलब आकार से ऊपर है निराकार, तो आकार क्या हो गया? आकार आध्यात्मिक है या भौतिक? भौतिक। तो भौतिक आकार जो है तो वो तो भौतिक जीवों के लिए है, बल्कि भगवान तो भौतिक नहीं है। भगवान भौतिक है? अगर भगवान भौतिक है तो भगवान का आकार कैसी होगी? आध्यात्मिक होगी। तो वो आकार निराकार से परे या निराकार से कम है? जो भौतिक आकार, भौतिक आकार तो हम मानते हैं, मायावादी भी भौतिक आकार मानते हैं, बल्कि बात यह है कि ये भौतिक आकार अगर भौत पंच भौतिक है, मतलब तब ये ब्रह्म जो है जिसको तुम आप बोल रहे हो आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का अगर आकार नहीं है, आध्यात्मिक का अगर आध्यात्मिक आकार नहीं है तो भौतिक से कम हो गया। इसका और भी दृष्टांत ऐसे दिया गया है कि भौतिक जगत प्रतिफलन है, प्रतिच्छवि है, तो ये प्रतिबिंब में जो दिखाई दे रहा है असल वस्तु में वो है, नहीं तो प्रतिबिंब में कैसे होगा? प्रतिबिंब में अगर रूप है, आकार है, तो हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक भी आकार है।
आकार भी है और निराकार भी है, लेकिन निराकार ऊपर
है, वही तो मैं विचार कर रहा है। निराकार अगर बोल रहे हैं आकार है, तो वो आकार आध्यात्मिक है या भौतिक है? अगर ये स्वीकार करते हो तो आकार आध्यात्मिक है, तो मान लिया गया कि आकार है, पड़े हैं या अपरे हैं, उसकी बात छोड़ो, भगवान का आध्यात्मिक आकार है, बस मामला खत्म। पड़े और गिरे इसके विचार हम बाद में करेंगे, आकार है या नहीं, ये पहले विचार कर। और हम देखते हैं अंत में, हमने क्या देखते हैं, ये ब्रह्म तुम कह रहे हो ब्रह्म, तो बल्कि वेद में परम ब्रह्म का भी प्रयोग हो रहा है, तो परम ब्रह्म कौन है, परम परे है या गिरे है, परे है तो परम ब्रह्म कौन है, भगवान जिसका रूप है, तो अब बताओ पर ये रूप आकार निराकार के ऊपर है या नीचे है, परे है। अगर परम ये निराकार जो ये है वो अगर ब्रह्म है तो परम ब्रह्म कौन है जो साकार है, और वेद में हम देखते हैं वो परम ब्रह्म का जो अंग ज्योति है वो है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। ओके
Because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. मतलब भगवान ने already complete arrangement प्रकृति में बनाया तो कोई पूछ सकते हैं कि अभी आजकल जो आधुनिक advancement है जैसे motor cars और television और ये सब जो है टेलीफोन, इनके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको और अच्छा से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दूर जा पा रहे हैं, इफेक्टिवली सब काम कर पा रहे हैं, तो नेचर अरेंजमेंट कंप्लीट है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं।
वो लिया कहां से, टेलीफोन जो बनाया उसका जो सामग्री जो है कहां से मिला, नेचर का जब दिया हुआ उससे तुम इधर उधर करके कुछ खिलौना बना रहे हो, तो तुम्हारा कहना है कि चूंकि नेचर खिलौना नहीं बनाया है तो हम उससे बढ़कर हैं, बल्कि अगर नहीं नेचर वो कंपोनेंट्स को नहीं देता तो कैसे बनाता, और नेचर कैसे बनाया, तुम्हारा कान बनाया नेचर और उसका एक्सटेंशन तुम बनाया टेलीफोन तो कौन बढ़कर है, तुम्हारा सृष्टि या नेचर का सृष्टि, नेचर अगर कान ले लेता था तब सारे टेलीफोन से क्या होता, तुम टेलीस्कोप बनाया, टीवी बनाया, वीडियो बनाया, बल्कि नेचर अगर आंखें ले लेते तो क्या होता, उसका कोई कीमत रहता, कुछ मूल्य रहता उसका नहीं, तो पहले सोचो नेचर क्या दिया है, और तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ नेचर का ही एक्सटेंशन कर रहे हो, नेचर से बढ़कर कुछ नहीं कर रहे हो।
हम की जो प्राकृतिक जो जीवन है, रूरल लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ, वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, इस प्रकार हम बताते हैं, तो लेकिन उसका काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि नेचुरल लाइफ में आप बस उसमें इतना कंफर्ट्स या इतना क्या बोलते हैं ये जैसे हम आगे इतना अच्छा इफेक्टिवली सब कर पा रहे हैं सिटी लाइफ में टेक्नोलॉजी के साथ, वो नेचुरल लाइफ में नहीं है, तो
नेचुरल लाइफ में नहीं है। ओके तुम 24 घंटा टीवी देख रहे हो बल्कि रात को सो नहीं पाते हो, तो आप बताओ कौन सी ये सुख कौन अधिक सुखदायक है, टीवी वॉच करना या रात को सही रूप से सोना। तुम टीवी देखते हो रात को सो नहीं पा सकते हो, बल्कि सोने के लिए क्या करते हो, दवाई खाते हो, तो अब बताओ अगर टीवी देखना उतना मजेदार होता तो सोने के लिए तुम इतना क्यों प्रयास कर रहे हो? तो अब बताओ कौन क्या अधिक आनंददायक है, टीवी देखना या सोना? तुम हाँ कितने सारे मजा उठा रहे हो, बल्कि खाना नहीं हजम हो रहा है, मजा होगा हाँ? बद हजम हो गया हाँ? तो असल में सही सुख क्या है? सही सुख है अच्छा से सोना और सही रूप से खाना पकाना, खाना खाना। दे आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्जरी ऑफ लाइफ। नाउ यू गो एंड सी वेयर पीपल स्लीप वेल एंड डाइजेस्ट देयर फूड वेल, इन सिटी और इन द विलेजेस। सिटी लाइफ इज सिटी लाइफ हेल्थी और विलेज लाइफ हेल्थी? सो डू यू वॉन्ट टू लीव ए हेल्थी लाइफ और अनहेल्थी लाइफ? ऑल द कम्फर्ट एंड लक्जरी इज देयर बट यू आर अनहैप्पी। व्हाट इज द पॉइंट इन दिस कम्फर्ट एंड लक्जरी? बुद्धिमान का ये विचार होगा, बल्कि जो निर्बोध है, जो मूर्ख है, वो समझेगा नहीं। ओके सो आई विल स्टॉप नाउ, थैंक यू। आई हैव अ मीटिंग एट 6 o'clock। सही, थैंक यू। हरे कृष्णा।